તારીખ 9-8-1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 537 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સ્વયં પ્રવચન નંબર 571
પત્ર 537 મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં સામાન્યપણે બધાને લાગુ પડે એવો પત્રનો વિષય છે. સ્ત્રી સ્તંભ તીર્થવાસી મુમુક્ષુજનો પ્રત્યે યુવમયી ભૂમિથી ખાલી જગ્યા મૂકી છે ના આત્મસ્મૃતિપૂર્વક યથાયોગ્ય પ્રાપ્ત થાય. વિશેષ વિનંતી કે મુમુક્ષુ અંબાલાલનું લખેલું પત્ર એક આજે પ્રાપ્ત થયું છે. કૃષ્ણદાસને ચિત્તની વ્યગ્રતા જોઈને તમારા સૌના મનમાં ખેદ રહે છે તેમ બનવું સ્વાભાવિક છે. કૃષ્ણદાસભાઈ કરીને સારા પાત્રતાવાળા મુમુક્ષુ હતા. કોઈ કારણથી કોઈ પ્રસંગના નિમિત્તે ઉદયને લઈને ચિત્ત વ્યગ્ર રહેતો હશે. વ્યગ્ર એટલે શું? ટેન્શનવાળો. વ્યગ્ર એટલે તણાવ. એટલે બીજાને પણ એમ થયું કે આપણા મુમુક્ષુ છે, યોગ્ય જીવ છે, છતાં અત્યારે માનસિક પરિસ્થિતિમાં તકલીફવાળા છે, એટલે બીજાને પણ ખેદ થાય એ સ્વાભાવિક છે. જો બને તો યોગ વાશિષ્ઠ ગ્રંથ ત્રીજા પ્રકરણથી તેમણે મને જાણશો. ત્રીજું પ્રકરણ છે એ વૈરાગ્ય પ્રકરણ છે. રામચંદ્રજીનું જે વૈરાગ્ય છે અને ત્રીજું પ્રકરણ છે એ વાંચવા માટે અમે ભલામણ કરી છે. કેમ કે સંસારના અનિચ્છનીય જે પ્રસંગો છે એ પ્રસંગોમાં વૈરાગ્ય એક જ ઉપકારી છે. જેટલી અપેક્ષા વૃત્તિ સાંસારિક પ્રસંગોમાં અને ઉદયોમાં જેટલી અપેક્ષા વૃત્તિ એટલી ઉપાધિ વિશેષ થાય છે. જીવને ઉપાધિ એટલી વધે છે. જો જીવને વિરક્તપણું આવે, વૈરાગ્ય આવે, તો એ આપોઆપ ટેન્શન બંધ થઈ જાય છે. આ એક કોઈ પણ જાતના તણાવને બંધ કરવાનો રામબાણ ઉપાય છે. ઈંડીને લઈને થયું, કિસી ભી મનુષ્ય કો તણાવ હોતા હૈ, માનસિક તણાવ હોતા હૈ, ઉસકા કારણ ક્યા? સર્વ સામાન્ય બાત સબકો લાગુ પડે એસી હૈ કે ઉસકી જો અપેક્ષા હૈ વો જો ચાહતા હૈ વૈસા નહીં બનતા હૈ, ઇસે પ્રતિકૂળ બનાવ ખડા હો ગયા હૈ, તો ઉનકો ટેન્શન આતા હૈ. કિસી કો ભી ટેન્શન આતા હૈ જીવ કો, ઉસી વક્ત વો વૈરાગ્ય મેં આ જાય. મેં એક આત્મા હું, ઇસ મનુષ્ય ભવ મેં મેરા આત્મકલ્યાણ કરના વહી મેરા પ્રથમ કર્તવ્ય હૈ. સબસે પ્રથમ કર્તવ્ય ક્યા હૈ? અનંત કાલ સે દુર્લભ એસા જો મનુષ્ય ભવ મુજે પ્રાપ્ત હુઆ હૈ તો સબસે પહેલે મુજે મેરા આત્મકલ્યાણ કરને કા પ્રયાસ કરના ચાહિએ. ઓર સંસાર મેં જો સંયોગો કી અપેક્ષા વૃત્તિ હૈ ઉસસે તો નયા કર્મ બંધન હોતા હૈ, પર જન્મ મરણ પ્રાપ્ત હોતા હૈ તો ઉસસે મુજે વિરક્ત નિરસપણ આ જાય, વિરક્તતા આ જાય, મેરે લીએ કલ્યાણકારી હૈ. तो उसका तनाव खत्म हो जाता है, किसी भी प्रकार का तनाव हो खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरी पहुंच संयोग का कार्य करने में, मेरे आत्मा की पहुंच तो नहीं है। मैं कैसा भी परिणाम कर सकता हूं, परिणाम मेरा हो सकता है, परंतु बाहर में कार्य संपन्न हो या नहीं संपन्न हो उसमें मेरा कोई अधिकार तो नहीं है। इतनी सीधी सादी समझ करके वैराग्य में निरस्ता में आए तो टेंशन नियम से खत्म हो जाएगा, किसी भी प्रकार का टेंशन हो नियम से मिट जाएगा। संसार में तनाव का कोई इलाज नहीं है, सांसारिक इलाजों में तनाव का कोई इलाज नहीं है, जबकि अध्यात्म में, अध्यात्म क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में तनाव का रामबाण इलाज है। कैसा इलाज है? ये रामबाण इलाज है। तो वो दवाई बताया कि आप योग वाशिष्ठ तीसरा प्रकरण पढ़िए। योग वाशिष्ठ ग्रंथ तो वैसे है हिंदू धर्म का, फिर भी वैराग्य की बहुत सुंदर बातें हैं। जैन दर्शन में मूल तीर्थंकर देव ने निरूपण की है, ऐसी बातें वहां भी उन लोगों ने जैन ग्रंथों में से ले ली या भगवान की वाणी में से वो बात ले लिया है। इसलिए अभी भले वो अन्य मत के ग्रंथ में दिखे, लेकिन मूल बात तो भगवान तीर्थंकर देव की ये सब बातें हैं। ऐसी अच्छी सुंदर बातें दिव्य ध्वनि के अलावा और कहीं पाई जाती नहीं है। इसलिए वो ज्ञानी थे, मालूम थे कि अन्य मति भी भगवान की कैसे कैसी अच्छी बातें उठा लिया है, तो वो पॉइंट आउट कर देते थे कि भाई आपको वहां से वहां पढ़ो, आप ये मत समझो कि अन्य मत का वो है, तो भगवान का है, मूल में वो भगवान का है, तो किसी ने अपना लिया तो ठीक है। त्रिये प्रकरण से उसको पढ़ाइएगा और श्रवण कराइएगा। देखो दो बात क्या है, पढ़ने को भी बोलना और किसी मुमुक्षु साथ में बैठ करके उसको श्रवण भी कराएगा। तो श्रवण कराने में क्या होगा कि चर्चा होगी कि देखो रामचंद्र जी का कैसा वैराग्य है। तो प्रसंग ऐसा था कि रामचंद्र जी युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे, 16 साल की उम्र थी उनकी, 15 साल के बाद, और 16 साल की उम्र में उसका वैराग्य बढ़ गया। ज्ञानी पुरुष थे, उसी भूमि मोक्ष में गए हैं, मांगी पुंगी से गए ना, मांगी पुंगी से गए, अब सिद्धालय में विराजमान है उनकी आत्मा। तो बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे, वैरागी थे। तो जब वो युवानी में प्रवेश किया तो युवानी में रंगराग की वृत्ति बढ़ जाती है, जबकि वो ज्ञानी थी तो उसका वैराग्य बढ़ गया। एक अच्छा लक्षण है कि छोटी उम्र में रंगराग नहीं बढ़ करके वैराग्य और धर्म का क्षेत्र में आगे बढ़ने का जो भाव आता है वो शुभ लक्षण है। होनहार अच्छी है उसको ही ऐसा होता है, जिसकी होनहार अच्छी है उसको बचपन से ही, छोटी उम्र से ही अच्छा रास्ता, अच्छा रास्ते पे जाने का विचार आता है, वरना तो लोग चले जाते हैं, बह जाते हैं प्रवाह में, जो चलता प्रवाह है उसमें बहते हैं। तो बहुत वैराग्य में आए थे। घर में इनके लिए इसकी सगाई शादी के चर्चा चल रही थी, एक और दूसरी ओर उसका राज्याभिषेक की चर्चा चल रही थी कि युवराज है, पाटवी कुंवर है, अभी बड़ा हो गया है तो उनको गद्दी गद्दी पे बिठा दे और कोई अच्छी राजकुमारी के साथ उसका सगाई संबंध भी, शादी विवाह भी कर ले। उनको इस तरफ वैराग्य बढ़ रहा था, किसी से मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, एकांत में बैठे रहते थे, चिंतन करते रहते थे। तो सब चिंतित हो गए कैसा क्यों हो गया। फिर दशरथ राजा विचक्षण थे, उनके गुरु जो वशिष्ठ है उनको बुला लिया और तो बोले कि आप अपने शिष्य को थोड़ा ठीक संभालो, आजकल बहुत उदास रहते हैं और हम कहते हैं कि शादी करने की बात करते हैं तो मना कर देते हैं, राज्याभिषेक की बात करते हैं तो मना कर देते हैं, तो क्या बात है, आप इनके मन की बात थोड़ा समझ करके उनको रास्ते पे लिया। तो वशिष्ठ ऋषि उनके गुरु होने के बावजूद भी उनको संसार में डालने का जो भी बातें करते हैं उसके सामने वो वैराग्य की बात करते हैं कि महाराज आपने तो हमको ऐसी विद्या सिखाई है, अभी उल्टी बातें क्यों सिखाते हो आप? तो मैं उल्टी बातें कर रहे हूँ, आपकी उल्टी बातों में मैं कैसे आ जाऊंगा? पहले मैंने हाँ भरी है, सोच समझ के भरी है। आप कोई कारण विशेष को लेकर के या हमारे पिताजी को कहने से कुछ और बातें हमको समझा रहे हैं, लेकिन वो बात हमको तो कैसे गले उतरेगी, आप ही बताइए। तो जितनी जितनी बात अपने गुरु करते हैं उनको भी उतना अच्छा आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो पढ़ने लायक प्रकरण है। तो वो प्रकरण पढ़ने के लिए, श्रवण कराने के लिए, चर्चा करने के लिए अनुरोध किया है यहाँ पर। और प्रवृत्ति क्षेत्र से जैसे अवकाश मिले तथा सत्संग मिले वैसा करिएगा। क्या? कि उसको सांसारिक प्रवृत्ति से थोड़े दूर करके और सत्संग मिले, धर्मचर्चा हुए, ऐसा प्रसंग में उसको रखें। दिवस के दिन के भाग में ऐसा अधिक प्रसंग अवकाश लेने का बने उतना लक्ष्य रखना योग्य है। दिन प्रसंग में रात्रि को भले ही वो आराम करें, चिंतन करें, दिन में आप लोग उनके साथ रहिए। देखो क्या सूचना कितना दिया है, देखो समागम की इच्छा सभी मुमुक्षु भाइयों की है ऐसा लिखा, इसके पर मैं विचार करूंगा। आप लोगों को मेरा समागम की इच्छा है, ठीक है, मैं इसके पर विचार करूंगा। कार्तिक महीने में लिख रहे हैं पत्र, तो फिर माक्सर महीने के अंत भाग में या पोष महीने के प्रारंभ में बहुत करके ऐसा योग संभवित है। महीने दो में मैं कुछ निवृत्ति लेकर के निवृत्ति क्षेत्र में आ जाऊंगा, तो मेरा प्रत्यक्ष समागम उपलब्ध हो सकेगा। कृष्णदास को चित्त में से वृक्षों की निवृत्ति करने योग्य है। अब कृष्णदास को खुद को संबोधन करते हैं, पहले मुमुक्षुओं को संबोधन किया, अब कृष्णदास को संबोधन करते हैं कि आपको चित्त में से जो तनाव है उसको दूर करो। तनाव में रहने से नया कर्म बंधन होता है, तनाव में रहने से परिणाम और नया कर्म बंधन होता है। तो वो तो योग्य नहीं है, मुमुक्षु को योग्य नहीं है, पर दुखदायी भी तो है, वो कोई सुखदायी तो नहीं है, उसमें तो बहुत दुख होता है। तो कहते हैं कि वो तो योग्य योग्य है कि विक्षेप नहीं रखे, क्योंकि मुमुक्षु जीव को यानी विचारवान जीव को, क्या लिखे हैं, मुमुक्षु जीव को मैंने कुछ नहीं समझता है, बुद्धि नहीं लगाता है, वो बात नहीं है, बहुत विचारवान है, वो मुमुक्षु है, वो अपने हित और अहित के विषय में अधिक विचार कर सकता है, उसको यह मुमुक्षु कहा है, इसलिए विचारवान कहा है। मुमुक्षु जीव को यानी विचारवान जीव को इस संसार में अज्ञान के सिवा दूसरा कोई भी भय होता नहीं। क्या? मुमुक्षु जीव को यानी विचारवान जीव को भय नहीं होना चाहिए। तनाव होता है तो साथ साथ भय होता है, जब भी तनाव होता है तो किसी न किसी प्रसंग का भय पैदा हो जाता है, वो भय का दुख भी उसके साथ में है। तो कहते हैं कि मुमुक्षु जीव को तो संसार की प्रतिकूलता का भय तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों? कि प्रतिकूलता में तो अधिक पुरुषार्थ करने का मौका रहता है। भय किस बात का होना चाहिए? एक अज्ञान का, कि अगर मेरा अज्ञान मिटेगा नहीं और मेरा मनुष्य आयु पूरा हो जाएगा तो फिर बहुत अनंत काल के पहले भी मुझे मनुष्यपना मिलने वाला और मेरे को बहुत अन्य दुर्गति के दुख भोगने पड़ेंगे, उसका भय उसको होना चाहिए कि वो अज्ञान के कारण से होता है, इसलिए ये पैसा अज्ञान के कारण से। अब देखिए प्रतिकूलता का भाई से जीव को टेंशन आता है, कैसे आता है, और दुर्गति की अनंत प्रतिकूलता उसका टेंशन क्यों नहीं आता है? जब तुम ये कहोगे कि भाई प्रतिकूलता आएगी तो तनाव तो आएगा ही आएगा, तो हम कहते हैं कि बड़ी प्रतिकूलता आएगी इसका क्या, आपको छोटी प्रतिकूलता का दुख होता है, पर बड़ी प्रतिकूलता का दुख नहीं, आने वाली नई प्रतिकूलता का, बड़ी प्रतिकूलता का दुख नहीं होता है, इसका मतलब हमारी समझ में तो नहीं आता। ज्ञानी ऐसे कहते हैं कि हमारी समझ में वो बात नहीं आती। अगर अज्ञान वाली परिस्थिति में मनुष्य आयु पूरा होता है किसी का भी, तो उसको फिर मनुष्य भाव मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि संसार में जीव ऐसे परिणाम करते हैं कि दुर्गति में चले जाते हैं और बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं वहां आती है, तो उस बड़ी प्रतिकूलता का तो भय नहीं रखते, पर वर्तमान में थोड़ी छोटी मोटी जो प्रतिकूलता आती है उसका ज्यादा भय लगता है, टेंशन आता है। ये बात कहाँ की समझदारी की है, कैसी समझदारी की ये बात है, ये बात को पॉइंट आउट करते हैं क्या, कि विचारवान जीव को तो, जो अविचारी है उसकी बात छोड़ दो, जो अपना सुख दुख का दीर्घ दृष्टि से विचार कर सकता है, क्या 150 साल का विचार नहीं करना है हमें, मुमुक्षु जीव है वो दीर्घ दृष्टि वाला है, वो अपना अनंत काल का जीवन के लिए सोचता है, और जो छोटी टुकी दृष्टि वाला है, शॉर्ट साइटेड जिसको कहते हैं, वो 150 साल का देखता है कि मेरा 150 साल में मैं कैसे ठीक आराम से जीवन जीऊं, लेकिन वो भी प्रारब्ध अधीन है, खुद के अधीन तो है ही नहीं, फिर भी वो इसकी चिंता करेगा, आगे की चिंता नहीं करेगा। जो विचारवान जीव है वो आगे की चिंता करेगा, तो उसको तो अज्ञान के सिवा दूसरा भय हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए, अज्ञान का ही भय होना चाहिए। संयोग तो प्रारब्धाधीन है, एक अज्ञान की निवृत्ति इच्छवी, अज्ञान की, अज्ञान का नाश की इच्छा करना, क्या कहते हैं, एक अज्ञान के नाश की इच्छा करना, वो रूप जो इच्छा है, वैसी जो इच्छा है, उसके सिवा विचारवान जीव को दूसरी इच्छा नहीं होती। क्यों दूसरी इच्छा नहीं होती, कि दूसरी इच्छा तो काम में आती नहीं, वो तो प्रारब्धाधीन है, सब हमारा पूरा जीवन है, आयुष पर्यंत का हमारा जो जीवन है उसका प्रारब्ध हम बांध के आए हैं, उसी के अनुकूल ही सब होने वाला है, हमारी इच्छा के अनुकूल तो होने वाला नहीं है, तो वो तो बात छोड़ दो, वो तो आप कुछ भी विचार करो नहीं करो, जो होने वाला है प्रारब्ध में वही होगा। तो एक अज्ञान का नाश कर लेना, यह इच्छा मुमुक्षु जीव को, विचारवान जीव को मुख्य रूप से होनी चाहिए। और पूर्व कर्म के बल से, उन्हें प्रारब्ध के बल से ऐसा कोई उदय हो, प्रतिकूल उदय हो, कोई पूर्व प्रारब्ध के कारण से कोई प्रतिकूल उदय हो, तो भी विचारवान के चित्त में संसार काराग्रह है। कोई अच्छा उदय हो, अनुकूलता का हो या प्रतिकूलता का हो, मुमुक्षु को तो ऐसा ही लगेगा कि ये एक बंदी खाना है, कारागृह मैंने क्या है, बंदी खाना है, मैं पराधीन हूँ, मेरी इच्छा के अनुकूल कुछ नहीं कर सकता, मैं डिपेंडेंट हूँ, मैंने अन्य संयोग के परतंत्र रूप से मुझे मेरा जीवन जीना पड़ता है। देखो ये कानून है, तो कानून से सबके हाथ बंधे हुए हैं कि नहीं है। एक व्यापारी भी विचार करे कि मेरे रुपये, मेरी संपत्ति, मेरे रुपये, मेरे वही खाता, मेरी कलम, मैं चाहूं ऐसा लिख सकता हूं क्या मेरे वही खाता में? नहीं, जैसा कानून कहता है वैसा तुम अपना वही खाता रखो और उसका हिसाब किताब गवर्नमेंट को दिखाओ। रुपया आपके, वही खाता आपके, कलम आपकी, लेकिन स्वतंत्रता आपकी नहीं है। स्वतंत्रता आपकी है क्या? नहीं। हर क्षेत्र में जाओ, ये तो दृष्टांत है, आप हर क्षेत्र में जाओ, आपको परतंत्र रूप से इस संसार में जीवन जीने का फर्जियातवाद है, चाहे घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कहीं भी हो, परतंत्र रूप से जीवन जीना है, स्वतंत्र रूप से नहीं जीवन जी सकते हैं। इसलिए वो कारागृह है, क्या है विचार करो तो वो कारागृह जैसे बंदी खाना में बंदी को जैसा वो पुलिस कहेगा वैसा करना पड़ेगा, सुपरिंटेंडेंट जेलर बोलेगा वैसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही रहना पड़ेगा, वैसे ही है। किसी को देह में बीमारी है, कोई चाहता है बीमारी? नहीं चाहता है, तो क्या करे? देह को दूर कर सकता है क्या? देह की बीमारी को खुद दूर कर सकता है क्या? अगर कर सकता है तो आने ही क्यों दे, बीमारी को क्यों आने दे? डॉक्टर खुद नहीं आने दे, लेकिन डॉक्टर खुद बीमार हो जाता है, तो वो खुद परतंत्र है। शरीर से लेकर के सभी क्षेत्र में जीव परतंत्र है। वो बात समझ में आनी चाहिए कि हम कारागृह में है, उसमें उत्साह रस लेने योग्य नहीं है। बंदी खाना में किसको रस आता है? मूर्ख, मूर्ख है उसको आता है, पागल है ना उसको रस आता है, वो भी चलो अच्छा हुआ है, तो समझदार को आएगा क्या? तो ये भी एक बंदी खाना है और कुछ नहीं है, कारागृह के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा लगना चाहिए, संसार कारागृह लगना चाहिए। संसार में समस्त लोक, संसार के सभी जीव दुख से आर्त है, सबके परिणाम आर्त ध्यान वाले हैं कि नहीं है देख लो, किसी को भी पूछो परिणाम सारे दिन में क्या चलता है, आर्त ध्यान के चलते कौन से चलते हैं? एक धर्मात्मा को छोड़ करके किसी भी संसारी जीव का परिणाम देखो, 24 घंटा आर्त ध्यान के अलावा कुछ दिखता है क्या?
नहीं।
तो आर्त ध्यान में दुख के सिवा क्या होता है? ज्ञानी का ये ऑब्जर्वेशन है सारा जगत के प्रति अवलोकन है कि समस्त लोग दुख से आर्त है, दुख को लेकर के आर्त है, आर्त है मैंने आर्त ध्यान में आकुलित है, भयाकुल है, भय से भी आकुलित है, सबको भय है। कैसे भय है? अनित्यता का बड़ा भय है, कह रहे रे कल क्या हो जाएगा, क्या मालूम पड़े, मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, जो मेरे अपने वाले हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कुछ हो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ अनिश्चितता का, अनित्यता का भय सभी संसारी प्राणी को दुख में सताता है। देख लीजिए सताता है कि नहीं सताता है? कोई कितने भी संपन्न हो, हाँ राजा महाराजा सेठ श्रीमंत कुछ भी हो, अनित्यता का भय उसको दुखदायक होगा, होगा और होगा ही। और राग द्वेष के प्राप्त फल से जल रहे हैं, कैसा है अंदर में जलन सबको चलती है, राग और द्वेष के परिणाम, राग और द्वेष के परिणाम है, उसके फल से अंदर में चिंतित 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 जलन 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 सबको चलती है। हाँ, वो तो जो हड़ु कर्मी होते हैं उसको तो मंद विकल्प में भी दुख लगता है। या तो सामान्य जनों की बात किया है तो संसार के सभी जीव की दुखमय हालत है, कोई सुखी नहीं है संसार में। ऐसा विचार निश्चय रूप ही वर्तता है, किसको? विचारवान जीव को ऐसा विचार हुआ करता है कि अरे रे सभी दुखी है, सारा संसार में दुख की आग लगी है, सब जल रहे हैं, अब मुझे यहां से छूट जाना है, निकल जाना है, क्या करके
जाना है?
मैं जो चारों ओर आग लगी हो तो खुद का लगा करके मैं बाहर निकल जाऊं। कैसे निकल जाऊं? खुद करके निकल जाऊं मैं, ऐसा भाव आएगा कि नहीं आएगा? जब घर में या कहीं भी चारों ओर आग लगी हो तो कहीं से भी कूद करके भी आग से बाहर निकल जाने का भाव आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा भाव विचारवान मुमुक्षु जीव को आता है। ये संसार सभी दुख से दुखी दुखी दुखी, चारों ओर सब दुखी हैं, मेरे को एक इस दुख से छूट जाना है। अब इस दुख में नया दुख आया, ऐसे परिणाम मुझे करना नहीं है, ऐसे कार्य मुझे करना नहीं है। इसलिए राग द्वेष के प्राप्त फल से सब जलते हैं, ऐसा विचार निश्चय रूप ही वर्तता है। ऐसा विचार सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं होता है, क्या होता है उसका? निश्चय होता है, दृढ़ता वाला है वो विचार होता है। निश्चय रूप में दृढ़ता वाला उसका विचार होता है, उसको कोई बिगा सकते नहीं है। और ज्ञान प्राप्ति का कुछ अंतराय है, मुझे वर्तमान में जिस ज्ञान से निराकुल सुख शांति मिले वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। मुमुक्षु की दशा बहुत विचित्र है, एक और उनको संसार दुख रूप लगता है और असंसार रूप मोक्ष मार्ग के मुख्य परिणाम को वो प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत विचित्र परिस्थिति है। तो उसको क्या विचार आता है कि ज्ञान प्राप्ति का मुझे अंतराय चल रहा है, यानी मैंने कोई ऐसे परिणाम किए हैं पर मेरी अयोग्यता ऐसी बन चुकी है। अंतराय मैंने क्या है? मेरी अयोग्यता, वही मेरा अंतराय है, और कोई मेरा अंतराय नहीं है। हाँ, कि मैं चाहता हूं सत्संग से सदग्रंथ से ज्ञान प्राप्ति तो चाहता हूं, लेकिन मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। मेरे शाश्वत अव्यावाद स्वरूप का मुझे प्रत्यक्ष रहा है, यही अयोग्यता है। तो अंतराय मैंने खड़ा किया है कुछ कारण, आगे कुछ विपरीत का श्रम करके वो अंतराय मैंने खड़ा कर दिया है। इसलिए मुझे अभी वर्तमान में शांति भी नहीं और मुझे संसार में जाना भी नहीं, दोनों बात है। इसलिए ये कारागृह संसार मुझे भाई का हेतु है, संसार में चला जाऊं मैं आगे बढ़ूंगा वो मेरे लिए बहुत आपत्ति का कारण बन जाएगा, भविष्य में दुर्गति के दुखों का आपत्ति का कारण बन जाएगा। इसलिए मुझे वहां तो आगे नहीं बढ़ना है, मैं कोशिश करूं ज्ञान प्राप्ति की और आत्मा के सुख शांति की प्राप्ति है उसका मैं प्रयास करूं, लेकिन मुझे संसार में आगे बढ़ना नहीं है। यह कारागृह रूप संसार मुझे भय का हेतु है और लोग का प्रसंग करने योग्य नहीं है, समाज लोग में से थोड़ा दूर रहना है मुझे, क्योंकि सब तो संसार में रंग राग में डूबे हुए हैं, वही बात वही चर्चा राज कथा भोजन कथा यही सब भी कथाएं चलेगी, लोग के बीच में क्या चलने वाले हैं, तो इस भी कथा चलेगी, तो यहां से तो मुझे दूर रहना है। ऐसे पर्यावरण में ऐसे एटमॉस्फेयर में मुझे जीना नहीं है। क्यों? कि मैं तो कमजोर हूँ, मुझे इन्फेक्शन लग जाएगा उसी बातों का। जैसे गंदी हवा में रोग लग जाता है, वैसे समाज में तो सब गंदी हवा है। संसार के लोग अन्य अन्य लोगों का संबंध बढ़ाने में उत्साहित होते हैं और प्रयत्नवान रहते हैं, जबकि मुमुक्षु जीव है वो लोग से दूर जाने का प्रयत्न करता है। बहुत सुंदर बात किया है, मुमुक्षु के लिए थोड़ा शिक्षा मिले, समझने का मिले, ऐसा बात किया है। अपना प्रयोजन हो, कोई काम हो, आना जाना हुए, अलग बात है। बाकी लोगों का, संसारी लोगों का संग करने जैसा नहीं है, ये बात ध्यान में रखने योग्य है।
टेंशन ऊपर क्यों दबक का वार?
बहुत बहुत सुंदर मार्गदर्शन है। कोई पण मुमुख सुने सारा में सारू मार्गदर्शन मिले, ये भी बात है। बहुत ज्ञानी पुरुष थे, महाज्ञानी पुरुष थे और बहुत अनुभवी पुरुष होने से सभी अनुभव में से गुजरे हुए थे। बहुत अनुभव लिया है, बहुत अनुभव लिया है। अभी वर्तमान में छोटी उम्र है 28 साल की, लेकिन पूर्व भव में बहुत का जो अनुभव है, उस अनुभव का निचोड़ उनकी वाणी में आता है, ये विशिष्टता है। वो कहते हैं कि लोगों का प्रसंग करने योग्य नहीं है, लोग प्रसंग से दूर रहना, हो सके वहां तक दूर रहना। ऐसा प्रश्न हो सकता है यहाँ पर कि भी क्या करें, व्यवहार में तो व्यवहार निभाना पड़ता है, लोगों के साथ रहना है तो उसका व्यवहार भी निभाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न अपने आप को पूछना चाहिए कि क्या हमें लोगों के बीच में अनंत काल रहना है, या लोगों से छूट करके लोकोत्तर स्थान में सीधा ले में जाना है, क्या करना है? ध्येय को निश्चित करो, अपना ध्येय क्या है? संसार में रहने का ध्येय है या मुक्त होने का ध्येय है? ध्येय नित्य किए बिना तो कोई काम होने वाला है ही नहीं। तो अगर ध्येय संसार में रहने का है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, तो वो तो भटकना पड़ेगा। अब जो है मुक्त होने का है, तो हो सके उतना प्रसंग को कम करो। कितना? जितना बन सके उतना कम करो, कम करते जाओ, संक्षेप करो। बढ़ाने का तो विचार छोड़ दो, लेकिन जो भी संबंध है उसको भी जितना हो सके उतना कम करो। अभी अपने थानकवासी के वो बड़े नेता है ना, हस्तिमल जी, वो परिचय में आए ना, अबू के शिविर जिसने अपना बनाया हो, इतनी संस्था में वो जुड़े हुए हैं, इतनी संस्था में हिंदुस्तान भर के, अब हर जगह इस्तीफा लिख दिया। क्या किया? संसार के कारोबार को तो छोड़ दिया था, व्यापार व्यवसाय तो छोड़ दिया था, पर घर को भी छोड़ करके उपाश्रय में आकर के बैठ गए थे। क्या धार्मिक वृत्ति वाला आदमी है तो उतना तो संक्षेप कर लिया था, तो संपत्ति बड़ी है, फिर भी सबको छोड़ करके व्यवस्थित करके, कोई लड़ाई झगड़ा तंटा नहीं हुए लड़कों में परिवार में, खुद बैठ गए उपाश्रय में। अब इस लाइन का थोड़ा परिचय हुआ, अभी तो प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है, तो उसको ये बात तो समझ में आ गई कि लोगों का परिचय बढ़ाने लायक बात नहीं है। अगर अपना आत्मकल्याण करना है तो ये सब झंझट से दूर हो जाना पड़ेगा। सब जगह इस्तीफा लग दिया, हमको कहीं भी नहीं रहना है, हमको हमारा काम करने दो, अभी ये विचार सबसे पहले आएगा, ये विचार सबसे पहले आएगा। हमने को तो अपना काम करना है, इसलिए हमको फुर्सत चाहिए। ये संस्थाओं की जो झंझट है उसमें तो गड़बड़ी आजकल बहुत है, वो तो खुद को अनुभव तो बहुत था, बुजुर्ग आदमी है, सब जगह से हट गए, सब जगह से। लोगों का प्रसंग करने योग्य नहीं है, यही एक भय विचारवान को घटित होता है। यही एक भय कौन सा, कि मेरा अज्ञान नहीं मिटेगा तो मैं संसार में अनंत काल दुर्गति में दुख भोगने के लिए भटकूंगा। बड़ी आपत्ति मेरे सामने खड़ी है, जैसे कैसे भी अभी अवकाश है, प्रारब्ध योग से जैन धर्म मिला है, प्रारब्ध योग से मनुष्यपना भी मिला है, प्रारब्ध योग से ज्ञानियों के संसार को तिरने के लिए जो वचन मिलने चाहिए, उपदेश मिलना चाहिए, वो भी हमको मिला है, तब इस मौका का मैं पूरा पूरा फायदा उठा लूं। अब मुझे संसार में भटकना नहीं है। अब बोलिए, संसार की बाड़ी हरी भरी रखनी है या उज्जड़ करनी है? एक नया प्रश्न थोड़ा विचार कर लें अपन, हाँ? क्यों कि हमको हमारी संसार की बाड़ी हरी भरी रहे उसमें हम राजी है, और ऐसा नहीं हो तो हम नाराज है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जिसको संसार में भटकना है उनके लिए वो बात है, जिसको संसार से छूट जाना है उनको तो अपना आत्मकल्याण के अलावा कोई लक्ष्य नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई निष्ठा नहीं, कोई धुन नहीं, कोई बात दूसरी होती नहीं, एक ही धुन होती है। अब परीक्षा के विषय में कुछ विशेष बात दूसरे पैराग्राफ में वो खोलना चाहते हैं। परिश्रम मैंने क्या, परिश्रम मैंने प्रतिकूल प्रसंग, क्या
प्रतिकूल प्रसंग,
उसको परिश्रम कहते हैं। दो शब्द है, उपसर्ग और परिश्रम। उपसर्ग दूसरे लोगों के ओर से किया जाता है, मनुष्य से, तिर्यंच से और देव से, तीन प्रकार के उपसर्ग होते हैं। और परिश्रम है वो कुदरती प्रतिकूलता है, कुदरत से जो प्रतिकूलता आती है उसको कहते हैं परिश्रम। उस विषय में थोड़ी विशेष बात कहना चाहते हैं। महात्मा श्री तीर्थंकर ने निर्ग्रंथ को प्राप्त परिश्रम सहन करने की बार बार शिक्षा दी है। भला मैंने शिक्षा, शिक्षा हिंदी में शिक्षा ही शब्द है,
है?
कौन सा शब्द है, भला मन शब्द रखा है, सूचना, सूचना ठीक है, सूचना भी ठीक है। महात्मा श्री तीर्थंकर ने निर्ग्रंथ मैंने मुनिराज को, निर्ग्रंथ माने मुनिराज को, जो भी प्राप्त परिश्रम हो, मैंने कुदर ठंडी गर्मी बढ़ जाती है, बारिश बढ़ जाती है, अनेक प्रकार के प्रतिकूलता, शरीर में रोग आ जाता है, वो सब परिश्रम है। क्षुधा बहुत लगे और आहार का योग नहीं बने उसको क्षुधा परिश्रम कहते हैं। तृषा बहुत लगे लेकिन पानी तो मुनि को एक दफे आहार के बाद भी, आहार के बाद ही लेना होता है, दूसरे दफे मुनिराज आहार पानी लेते नहीं है, तो तृषा परिश्रम होता है। ऐसे अनेक प्रकार के जो परिश्रम हैं, 22 प्रकार के हैं, कितने, 22 प्रकार के परिश्रम हैं, वो तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने लिखे हैं, सूत्र जी में। तो कहते हैं कि सभी प्रकार के परिश्रम सहन करना, सहन करना मतलब क्या, समभाव से उस प्रसंग में रहना, ऐसे प्रसंग में समभाव से रहना, आकुलित नहीं होना, उसका नाम सहन करना है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो हमको दुख सहन करना पड़ता है, वो सहन नहीं किया है, दुखी परिणाम हो गए, आकुलित परिणाम हो गए, वो सहन करने की बात नहीं। ज्ञाता दृष्टा रह करके, ज्ञान भाव में स्थिर रह करके, और परिसर के जो प्रसंग है उससे भिन्न अपना अनुभव करके निराकुल परिणाम में जो रहा जाए उसको कहते हैं कि सहन करना, उसको परिसर जय कहते हैं, और परिसर को सहन किया ऐसा कहने में आता है। तो उस तरह से भगवान ने सूचना की है कि जो भी परिसर आ जाए प्राप्त हुए उनको संभाव से वेदन करना, संभाव से वेदन करना, संभाव से भोग लेना, संभाव में अनुभव करना, संभाव का अनुभव करना, आकुलता का अनुभव नहीं करो।
मुमुक्षु को क्या है,
मुमुक्षु को तो बात करेंगे, वही बात तो वहीं ले जाना है, बात तो वहीं ले जाना है, लेकिन ऊपर से शुरू किया है, बात तो वहीं ले जाएंगे। तो वो कृष्णदास की बात परीक्षा की है ना, उनको जो परीक्षा है कोई इसी प्रकार का परीक्षा होगा, अज्ञान परीक्षा और दर्शन परीक्षा दो बात किया है, तो बात तो वहीं ले जाना है, लेकिन जो बात रखने का ढंग है वो थोड़ा विशेष विशेष प्रकार का है, इसलिए पद्धति बहुत अच्छी है। यह परिसर का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए कौन तीर्थंकर देव, यह परिसर का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए अज्ञान परिसर और दर्शन परिसर ऐसे दो परिसर प्रतिपादन किया है, 22 परिसर में दो परिसर का और नाम है, अज्ञान परिसर और दर्शन परिसर, दो परिसर का नाम है, दो परिसर प्रतिपादन किया है कि कोई उदय योग से बलवान पना हो, क्या कोई उदय योग का बलवान पना हो, ऐसा कोई उदय हो बलवान, प्रारब्ध का उदय हो, और सत्संग और सत्पुरुष का योग होने पर भी जीव को अज्ञान के कारण टालने में हिम्मत नहीं चल सकती हो, उलझन में आ जाता हो, तो भी धीरज रखना। देखो ये किसको के लिखा, मुमुक्षु जीव को लिखा, ये मुमुक्षु जीव के लिए लिखा है कि देखो ये अज्ञान और दर्शन मैंने अश्रद्धा, दर्शन परिसर मैंने जो विपरीत श्रद्धा है वो दर्शन परिसर है, विपरीत श्रद्धा को और विपरीत ज्ञान को परिसर कहने में आया है, क्योंकि वो जीव को प्रतिकूलता देता है, दुख देता है, इसलिए वो दो परिसर प्रतिपादन किया है। और कोई उदय योग का बलवान पना हो, क्या उदय ऐसा कोई प्रतिकूल हो, और सत्संग और सत्पुरुष का योग होने पर भी, योग तो अच्छा हुआ, सत्संग भी मिलता है और सत्पुरुष का उपदेश भी मिलता है, प्रत्यक्ष योग होता है, जीव को अज्ञान के कारण टालने में हिम्मत न चल सकती हो, इसका मतलब क्या हुआ, वो जरा समझने लायक बात है कि मैं कोई कदम उठाऊंगा, कोई धंधा का संक्षेप करता है, कोई निवृत्ति ले लेता है, लेने का विचार करता है सत्संग और सत्पुरुष के कारण से, तो उनको लगता है कि अगर मैं धंधा छोड़ दिया अब बाद में मैं निर्धन हो जाऊंगा, तो मेरे कमाई का साधन तो मैंने छोड़ दिया, निवृत्ति ले लिया, अब भविष्य में कोई प्रतिकूलता आ जाएगी तो मेरा क्या होगा, जब धंधा चालू हो गया तो मेरी आमदनी चालू है तो कोई प्रतिकूलता आएगी तो मेरी आमदनी से पूर्ति हो जाएगी, वो आमदनी तो रखी नहीं मैंने, या नहीं रखूं तो मेरा क्या होगा, वो हिम्मत नहीं चलती है। क्या होता है? हिम्मत नहीं चलती है। कुछ तो मेरे लिए साधन रख लेना चाहिए, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बिठाऊंगा तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगा, आगे मेरा क्या होगा। ये जो हिम्मत वाली, हिम्मत का एक कदम उठाने का एक मौका आता है, एक बात। दूसरी बात कि मैं, चलो मेरा कारोबार चालू है लेकिन मैं विशेष रूप से सत्संग में मेरा ध्यान रखता हूँ और समय गुजारता हूँ तो मेरा धंधा में कोई गड़बड़ हो जाएगी तो उलट पुलट हो जाएगा तो नुकसान ही आ जाएगी, तो मेरी सावधानी वहां नहीं रहेगी और मेरी सावधानी आत्मकल्याण के कार्य में हो जाएगी और कारोबार में व्यवसाय में मेरी सावधानी या ध्यान कुछ कम हो जाएगा, इस कारण से कोई प्रतिकूलता आ जाएगी तो एक दफे ये हिम्मत ना हिम्मत होने का एक प्रसंग आ जाता है। फिर से कोई मुमुक्षु जीव जब अपना जीवन का प्रभाव पलटने का विचार करता है या निश्चय करता है कि मुझे अभी मेरा जीवन बदलना है, संसारी लोग जैसे संसार में भटकते हैं कर्म बंधन कर कर करके, ऐसा तो मुझे नहीं करना है, अब मुझे सत्संग मिला है, सत्पुरुष का योग मिला है, मुक्ति का मार्ग मिला है तो मैं इस मार्ग में चला जाऊं तो मुझे संसारिक कार्यों से हटना पड़ेगा या यहाँ से मेरा जो ध्यान है अटेंशन है उसमें फर्क पड़ जाएगा, अगर ऐसा होगा तो मेरे जो प्रतिकूलता आ जाएगी तो
हिम्मत नहीं चलेगा,
तो उसका एक हिम्मत के लिए एक मौका आता है। हर एक को एक भय होता है, जब ये प्रसंग आता है तो ये भय खड़ा हो ही जाता है और क्या कहते हैं कि सत्पुरुष और सत्संग का योग होने पर भी जीव को अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण कौन है, अपना प्रसंग संसारी प्रसंग है, उसको टालना है, उसकी हिम्मत नहीं चल सकती, हो उसकी हिम्मत नहीं चलती है, विचलित होने का प्रसंग हो जाता है, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें, ऐसा करें या ऐसा नहीं करें, ऐसा करें या ऐसा नहीं करें, ऐसा करें या ऐसा नहीं करें, उलझन में आ जाता है। क्या होता है? उलझन में आ जाता है, बहुत उलझन में आ जाता है, कब क्या करना, क्या करना, अभी इधर जाते हैं तो ये भय लगता है, इधर नहीं जाते हैं तो संसार का परिभ्रमण का भय लगता है, अगर मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ते हैं तो परिभ्रमण का भय लगता है, संसार में नहीं आगे बढ़ते हैं तो प्रतिकूलता का भय लगता है, उलझन में आ जाता है, मुमुक्षु जीव उलझन में आ जाता है, ऐसा सबको लिए थोड़ा बनता है। तो भी ऐसी परिस्थिति में तब मार्गदर्शन देते हैं, तो भी धीरज रखना, क्या करना, धीरज रखना, बैलेंस रखना, शांत चित्त से विचार करना, कोई हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है, उतावली में कोई काम करना है नहीं है, उतावली में कोई एक्शन नहीं लेना है, क्यों, कोई जीव भावुकता में आकर के कभी उतावली में कोई निश्चय ले लेता है, कभी इसका परिपक्वता तो आया नहीं, ज्ञान प्राप्ति हुई नहीं, मुमुक्षुता भी इतनी मैच्योर नहीं हुई, परिपक्वता नहीं आई, कोई कदम उठा लिया बाद में प्रतिकूलता आई, प्रतिकूलता आई तो फिर परिणाम बहुत बिगड़ने लगे, ऐसे नहीं करना है। एक और, भय के मारे मार्ग भी छोड़ देना नहीं, भय के कारण से मार्ग को भी छोड़ देना नहीं, तो भी धीरज रखना, पहले तो शांति से धीरज रख करके विचार करना, और सत्संग सत्पुरुष का योग विशेष विशेष करके आराधन करना। ये जो परिपक्वता है वो सत्संग से आएगी, इसके बिना इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, कोई एक इलाज है। ऐसे समय में धीरज रख करके सत्संग और सत्पुरुष का योग विशेष विशेष करके आराधन करना। तो अनुक्रम से मैंने आगे जा करके, अनुक्रम से मैंने आगे जा करके कुछ काल पा करके अज्ञान की निवृत्ति होगी। सत्संग और सत्पुरुष के योग से अज्ञान मिटेगा तो ताकत आ जाएगी। शक्तिहीन कोई कुदका लगाता है तो गिर जाता है, तो पहले शक्ति को प्राप्त करो। क्या मार्गदर्शन दिया? तुम पहले शक्ति को प्राप्त करो, सत्संग में रह करके, विशेष रूप से सत्संग में रह करके शक्ति को प्राप्त करो। ताकत आ गई तो छोड़ना आसान हो जाएगा, किसी भी प्रसंग में तुमको तकलीफ होने वाली नहीं है, परिणाम गिरेंगे नहीं, ये बात हो जाएगी। तो अनुक्रम से अज्ञान की निवृत्ति होगी, क्योंकि निश्चय जो उपाय है और जीव को निवृत्त होने की बुद्धि है। क्या? एक तो ये खरा उपाय है, संसार से मुक्त होना ये खरा उपाय है, इसका निश्चय जो उपाय है। और जीव को संसार को नाश करने की तो बुद्धि है, उसका अभिप्राय तो पक्का है कि मुझे अभी संसार में भटकना नहीं है। तो फिर यह अज्ञान निराधार होता हुआ किस प्रकार से रहेगा? देखो क्या क्या बात क्या है कि निश्चय जो उपाय है वो तो अज्ञान का नाश करना वही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। नहीं, जैसे कैसे भी अज्ञान का नाश करके आत्मज्ञान की प्राप्ति करे, वही जन्म मरण और संसार से छूटने का उपाय है, वो तो निश्चय उपाय है। दूसरा कोई उपाय तीन काल तीन लोक में है ही नहीं, वो तो एक निश्चय उपाय है। दूसरा, जीव को अज्ञान को नाश करने का अभिप्राय हो गया है कि मैं जैसे कैसे भी अज्ञान को टालूंगा टालूंगा और टालूंगा, यही मेरा कर्तव्य है। तो फिर यह अज्ञान निराधार होता हुआ किस प्रकार से रहेगा? तो वो अज्ञान है, उसको आधार नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जीव को अज्ञान कब तक रहता है? जीव को अज्ञान कब तक रहता है कि जब तक वो उसको टालने का निर्धार नहीं करता है तब तक। क्यों? क्यों? खुद आत्मा जो अनंत शक्ति वाला है वही उसको रखने के लिए आधार दे रहा है। उस अज्ञान को आधार किसको मिलता है, किसका मिलता है? अपना खुद का आत्मा का ही मिलता है, जिसमें बहुत शक्ति है। जब आत्मा हट गया कि मुझे अभी अज्ञान किसी कीमत में नहीं रखना है, किसी भी कीमत में मुझे अज्ञान को मरण को टालने का उपाय है, वही कारण है। तो फिर जिसको आधार नहीं रहा, अज्ञान तो आत्मा की अवस्था में है, आत्मा का आधार नहीं रहा, वो कैसे रहेगा? प्रश्न करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई जीव मुमुक्षु जीव अज्ञान और मिथ्यात्व टालने का निर्धार करता है, उनका अज्ञान और मिथ्यात्व नियम से टलता ही है, गारंटेड टलता है, उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। संसार में कोई काम का प्रयास करो, सफलता मिले नहीं मिले आपके हाथ की बात नहीं है, लेकिन परमार्थ में आत्मकल्याण में प्रयास करने वाले को अवश्य अवश्य सफलता मिलती ही है, ये बात ज्ञानियों की गारंटी की है। 28 साल की उम्र में बंबई की बड़ी गद्दी पे बैठ करके चिट्ठी लिख रहे हैं। कहाँ बैठे हैं? बंबई में बैठे हैं। बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, 28 साल की जवान उम्र है और लिख रहे हैं कि देखो भाई बात तो ऐसी है, हम तो अंदर से निवृत्त हो गए हैं, थोड़ा प्रारब्ध भोगना का बाकी है, तो गद्दी पे बैठे हैं, जो कर्ज किया है दे देंगे, जिसका कर्ज है उसको वापिस, और आप लोगों को संसार से अज्ञान का नाश करो, हम अज्ञान का नाश करके ये बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? अज्ञान का नाश करके। 4 साल पहले अज्ञान का नाश कर लिया है, 4 साल हो गया है, अज्ञान का नाश करके बता रहे हैं रास्ता मुमुक्षु को करना योग्य है। और अज्ञान रहने वाला नहीं है। आत्मा, अगर आत्मा का आधार अज्ञान को मिट गया, छूट गया, तो ये ज्ञान रहने वाला है नहीं। अज्ञान नहीं रहेगा तो आप संसार के जन्म मरण से छूट जाओगे और हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्त कर लोगे। एकमात्र पूर्व कर्म योग सिवाय वहाँ कोई उसको आधार नहीं है। वहाँ जो पूर्व कर्म का प्रसंग है, प्रारब्ध है, किसी को व्यवसाय का, किसी को नौकरी का, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ठीक है, प्रारब्ध प्रारब्ध की जगह रहने दो, अंदर से आत्मा को हटा लो, अंदर से आत्मा को हटा लो, यही करने योग्य है। तो उस विषय में और भी विशेष मार्गदर्शन देंगे इसी परिग्रह में।
समय।